अरफात से मुतल्लिक आसानियाँ, पेज 44 है, हज और उम्रे की आसानियों में से देखिएगा। यौम अरफा के तायुन में गलती का हज पर असरअंदाज ना होना। जुलहिज्जा के चांद की पहली तारीख के हवाले से गलती की बिना पर यौम अरफा में चूक हो जाए और लोग हकीकी दिन की बजाय पहले या बाद में वकूफ़ अरफात कर लें तो इससे इनका हज मुतासिर नहीं होगा। मसला समझ आए? अब देखिए, हम दूसरे मुल्कों में होते हैं, हर साल ये एक रौला ही होता है ना, ईद ठीक हुई है कि नहीं हुई। कोई कहता है आज ईद है, कोई कहता नहीं, कोई कहता है हम सऊदी अरब के साथ करेंगे, कोई कुछ कहता है। बिल फर्ज वहाँ वाले मौजूद लोग जो हज के लिए गए हैं, सऊदी हुकूमत से गलती हो गई, किसी ने कहा चांद दिख गया लेकिन ना दिखाओ, या नहीं था तो कह दिया, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो 9 ज़िलहज नहीं थी असल में, वो 8 थी या 10 हो गई भी थी, आपके हज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी आसानी, क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्सहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वसअत से ज्यादा नहीं आजमाता। ठीक है, वकूफ़ अरफात के वक्त में आसानी। अरफात में ठहरने का मसनून और अफसल वक्त 9 ज़िलहज्जा को जवाले आफ्ताब से गरूबे आफ्ताब तक है। यहाँ से वह रवानगी गरूबे आफ्ताब के बाद होगी। अलबत्त किसी शख्स के 9 ज़िलहज्जा में दिन के किसी वक्त या 10 ज़िलहज की रात में तुलुए फजर से पहले किसी वक्त थोड़ी देर भी यहाँ ठहर लेने से वकूफ़ अरफात का रुकन अदा हो जाएगा, और इस पर कोई दम भी लाजिम नहीं है। बाज़ आइमाए कराम ने दम वाजिब किया है, लेकिन इस बारे में वारिद शुदा हदीस इनकी तायीद नहीं करती। बात समझ गए? मैक्सिमम टाइम आप अरफात में गुजारना चाहते हैं तो कौन सा? जवाले आफ्ताब, यानी फजर पढ़ के फिर आप निकल जाते हैं ना मीना से और उस तरफ पहुँचते हैं, जवाले आफ्ताब से लेकर गरूबे आफ्ताब यानी मगरिब तक। और आप देखिए, मगरिब की अजान का वक्त हो रहा होता है और आपने नमाज नहीं पढ़नी, वहाँ किधर पढ़नी है? मगरिब इशा मुज़दलिफा में जाकर। ये बात नहीं समझ आती, आम हालात में कहते हैं नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ो, इसी तरह आप देखिए, अब अरफात के मैदान में गए हैं, खड़े हैं खड़े हैं खड़े, कुछ नहीं हो रहा, वक्त लेट हो रहा है, और जोहर और असर जमा करके पढ़ाई जाती है। पता है ना आपको ये बात कि अरफात के मैदान में जोहर और असर दोनों जमा करके पढ़ी जाती हैं। अब मगरिब का वक्त हो गया, आप नहीं पढ़े, चलो जी चलो, आप आधी रात को जाके मुज़दलिफा पहुंचते हैं, वहां जाके मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। असल में अल्लाह ताला आपको मुझे ये सिखा रहा होता है कि जो कह दिया वो मानो, अपनी मर्जी ने करो। तो लिहाजा अब ये तो था मैक्सिमम वक्त, लेकिन पूरे वक्त में कोई किसी एक घड़ी के लिए भी अरफात के मैदान में आ गया तो उसका अरफात की हाजिरी जो थी वो हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर कोई अरफात में आ ही ना सके तो क्या उसका हज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होता। अच्छा, बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, पता नहीं वो मुझे तो आज तक किसी किताब में नहीं मिली, लेकिन बड़ों की बातों से सुनी हुई है, उस दिन जो चिड़िया परिंदा भी ऊपर से गुजर जाए उसका भी हज हो जाता है। भाई अगर उनका हज हो जाता है तो फिर उनको भी हाजी के, उनको भी फूल पहनाए, वो तो बेचारी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन यह है कि उस अरफात के मैदान में हाजिरी, ये है हज। इवन अगर उस मैदान से एक कदम बाहर खड़े हैं और उसमें नहीं आते तो नहीं होते, और लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी आ जाए, मजबूरी है, बस लेट होगी, पहुंच ही नहीं सके, आए और मगरिब होगी, चल पड़े, आपका किफ़ायत करेगा। बेस्ट तो ये कि ज़्यादा वक्त, और यकीन करें सारे हज में सबसे मुश्किल दिन वो होता है। मैंने जो हज किया था वो आज भी ऐसे याद है कि फीलिंग आती, ऐसे उस दिन समझ आता है कि हम कुछ नहीं है, सर पे सूरज, मिट्टी, पसीने, वॉशरूम आपको टॉयलेट वाले दूसरे खुले यूज़ करने हैं, गर्मी की शिद्दत है और खेमों में बंदे ऐसे बैठे, अब तो बहुत ही इंतजाम हो भी गए हैं, लेकिन यकीन करें उस दिन पता चलता है कि वाकई या कना बुद्धू या कनस्ता, इनके हमारी कोई पहचान नहीं, कोई मैं जानता नहीं, आप इधर बादशाह हैं, वजीर हैं, हजारों लोग आपसे प्यार करते हैं, वहाँ किसी को नहीं पता, पाँव पे पाँव देकर लोग आगे आपको निकल जाएंगे, परवाह भी नहीं होगी। और वही मुझे लगता है कि आजिज़ी और बेकसी अल्लाह को पसंद आती है, कि वाकई वो बंदा गुबार आलूद और मिट्टी में मिट्टी रुला हुआ अल्लाह के पास आ जाता है। और असल सारे हज का मकसद भी है कि अपनी अकड़ ख़त्म करो, ये जो हर वक्त टौर और अकड़ और मैं ये वो, अब आप देखिए बात कर रहे थे शादियां होती हैं, एक एक शादी पे हजारों खर्च नहीं होता, सिर्फ अपनी शान दिखाने, 20-20 खाने पका रहे हैं, ये ख़त्म करना है कि हमने जाके शादियां टौर वाली नहीं करनी, हमने ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसको पहन के हम स्टैचू बन जाए, हमने गाड़ियां अपने इस्तेमाल के लिए रखनी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करनी। अगर ये सब ना ख़त्म हुआ और आप हज करके आ गए तो फिर शायद एक और हज करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर से अकड़ और अना ख़त्म कर दे। फिर इसी तरह से आप देखिए, सारे अरफात का ठहरने की जगह होना। नौ जिलाज को सारा अरफात हुज्जाज के ठहरने की जगह, अलबत्ता कामिल तरीन मुकाम जबले रहमत के नीचे की जगह जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ फरमाया था। आप देखेंगे एक छोटी सी पहाड़ी है जबले रहमत ना, आपने जब खुतबा दिया था हज का तो वहाँ था, अगर मुमकिन हो तो उसके करीब बैठे। लेकिन चूंकि आपके खेमे मुख्तस होंगे, मेराहले अरफात के मैदान में भी खेमे आपके अपॉइंटेड ही होते हैं कि आप सबने कहाँ जाना है, लेकिन अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ी देर जबले रहमत के पास आना चाहिए। वहीं पास जबले नूर भी है जहाँ के बारे में मारूफ है कि अम्मा हवा और हज़रत आदम की वहाँ मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल यह है कि कहीं भी आप खड़े हो जाएं, उस वक्त आप मतलब दिल के साथ आपने अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है। बेहतरीन दुआ आपने फरमाई कि अरफा के दिन की दुआ है। हर नबी ने यह दुआ मांगी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। लेकिन यह है कि आप ये सारी दुआएं घर से ऐसे पढ़ के जाएं कि वहां जाकर आपको फौरन याद आ जाए और आप उसको पढ़ने लग जाएं। फिर इसी तरह एक और आसानी के अरफात में योम अरफा का रोज़ा ना रखना। योम अरफा का रोज़ा बड़ी शान और अज़मत वाला है, लेकिन मैदान अरफात में मौजूद हुज्जाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करते हुए ये रोज़ा ना रखें ताकि इन्हें दुआ और गिरिया उजारी में क़ुव्वत हासिल हो। आपको पता है ना, जो पीछे रहेंगे वो क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे ना नौज़िलहज को, हज ही नहीं रखेंगे वहाँ, क्योंकि हज का वो दिन सबसे मुश्किल दिन होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ टाइम लगता है। तो लिहाजा वहाँ रोज़ा ना रखना ज़रा। अब कोई कहता है नहीं नहीं मैं रोज़ा भी रख लूँगी और मेरे में ताकत है, जो कह दिया सो कह दिया, यहाँ वाले रोज़ा रखेंगे वहाँ वाले नहीं रखेंगे, ये फ़ायदा हो गया हज करने का। अच्छा, बिलफर्ज को हज पे ना जा सके तो क्या करें, हाय दुखी रोए धोते रहें, सारा वक्त रो रो के गुजार दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई सुबह उठ के मस्जिद में जाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ सीखता है, और वहाँ कुरान की एक या दो आयतें सीखता है, तो दो हजों के बराबर अजर लेकर आता है। एक आयत पढ़ के आएंगे तो एक हज। मैं सोच रही थी जितने लोग हज पे नहीं जा सके वो सब इल्म सीखने आ जाए, कि कितना अजर है कि आप यहाँ रहकर भी हज कर सकते हैं, हज का अजर रोज ले सकते हैं। लेकिन हम इसकी तो परवाह कम करते हैं, इल्म की महफिलों को तो हम वैसे कुछ नहीं समझते, और अजर और सवाब में बाज़ दफ़ा एक नहीं दो दो हज के बराबर है ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला हमें हर मौका जो हमारी ज़िंदगी में आए नेकी का उससे फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फिर इसी तरह अरफात में खुतबा मुख्तसर देना, यानी इमाम साहब देते हैं, आप देखिए बमुश्किल 15 से 20 मिनट का खुतबा होता है, मस्जिद नमरा से वो खुतबा आ रहा होता है और पूरी दुनिया के लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ पूरा हो जाता है। तो ये भी एक सुन्नत तरीका है। अरफात में जोहर और असर को जमा और कसर करना, यहाँ जोहर और असर दोनों नमाजें जोहर के अव्वलीन वक्त में एक अजान और दो दफ़ा इकामत के साथ जमा और कसर पढ़ी जाएंगी। ये सहूलत अरफात में हाजिर होने वाले सब हुज्जाज के लिए है। वो ये नमाजें ख्वा मस्जिद नमरा में इमाम के साथ बाजमात अदा करें या अपने खेमों में, मक्की और गैर मक्की हुज्जाज भी इस बारे में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी चीज़ आप थोड़ी सी समझिएगा, मैंने जिस साल हज किया था मुझे आज भी याद है, कुछ लोग ऐसे बदनसीब होते हैं सुन्नतों को पीछे करके अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने वाले। इमाम काबा वहाँ खुतबा करा रहे हैं, जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं कसर, और कुछ लोग उनके पीछे नहीं पढ़ रहे थे, कहते लो जी हज करने आए हैं तो अब जहाँ नमाजें छुट्टी करें पूरी पढ़ेंगे। अब अक्ल क्या कहती है कि जोहर पूरी पढ़ो, 12 रकत पढ़ो, असर जो है 4 रकत पढ़ो, अल्लाह ने कहते नहीं, दो फ़र्ज जोहर के दो असर के। तो ये काम सुन्नत की तबाह में करना है, तो वहाँ जाकर अपनी अलग नमाजें अदा करना। यानी वो मुझे इसलिए याद है कि एक पूरा खेमा था, तो उनके अंदर जो भी उनके लीडर जो बड़े होंगे उन्होंने वहाँ खुद अपनी जमात करा के लोगों को अलग अलग पूरी पूरी नमाजें पढ़ाई, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ी। तो आप देखिए कि जिस काम पे नबी सल्लम की मोहर लग जाए फिर उसमें आपकी मेरी अक्ल की तो ज़रूरत ही नहीं है इस्तेमाल करने की। वकूफ़ अरफात के मौके पर मसनून तरीका यह है कि दोनों हाथ उठाकर दुआ की जाए, अलबत्त ज़रूरत के वक्त सिर्फ एक हाथ बुलंद करके दुआ करना भी साबित है। यानी ख़ास तौर पे अरफा के दिन, यानी कहते हैं कि इतने हाथ खोलें कि आपकी ये बगलों की जो चांदी है ना वो भी दिखने लग जाए, यानी हाथ ऐसे खोल के आजजी है ना, ऐसे एक बेबसी की कैफियत, और खुले मैदान में आप पड़े हुए तो वहाँ वैसे तो आप दुआ कभी भी ऐसे भी मांग सकते हैं, हाथ ना भी खोल लेना उठाए, लेकिन उस दिन हाथ उठाना मसनून है। और ख़ास तौर पर जिस तरह वो आप नहीं कहते झोली फैलाना, इस तरह की कैफियत, तो दोनों हाथ ना भी उठ सकें तो एक हाथ उठा के भी दुआ मांग सकते हैं, और ये भी असल में अल्लाह ताला को बंदे पे रहम आ जाए इसी तरह की एक कैफियत है। यकीन करें अगर ये ना समझ के गए हो ना तो समझ कोई नहीं आता कि ये कैसी इबादत हम कर रहे हैं। आमतौर पे तो ये होता है ना 100 नफिल पढ़ लें, दुआएं मांग लें, वजीफे कर लें, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपने? आप देखिए कि आप वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं, यानी अगर बीच में जिक्र अस्कार और दुआएं निकाल दें तो हज वाले दिन कुछ भी नहीं है ना, रोज़ा जो आम फ़र्ज नमाजें थी वो भी मुख्तसर, ना कोई वहाँ लंबी चौड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो याद रखनी है, सिर्फ अल्लाह को अपनी बेबसी दिखा दें और उसके बाद आप अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दें। हालत आपकी, दिल की कैफियत, और उस दिन अल्लाह सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है कि वो अल्लाह ताला के बंदे इतने जो बैठे हैं, आप ज़रा सोचें तो सही कि आपके इतने पुराने धब्बे सारे दूर हो जाएं, और क्या चाहिए। शुक्र करके बंदा करे कि चलो अब ये साफ़ हो गया, अब मैंने इसको साफ़ रखना है, फिर ये भी याद रखे कि उसको साफ़ भी रखना है। हमें गुनाहों के धुलने से फीलिंग क्या आएंगी, नेकियों का शौक आएगा। आप घर गंदा हो ना, और गंदा करने को दिल करेगा। अब ज़रा साफ़ करके देखें, आपका दिल करेगा वो कोना भी साफ़ कर दूं जो भी नहीं किया। नामे अमाल जब साफ़ हो जाता है ना, तो उसके बाद बंदे का दिल कर रहा होता है कि वो फिर बिल्कुल ही उसको साफ़ से साफ़ कर दे।